प्रार्थना करने के लिए हल्के से अपनी आँखों को बंद करें और परमात्मा का स्मरण करें। हे प्रभु, ज्ञान के पथ पर, आत्म कल्याण के पथ पर पल पल आगे बढ़ते रहें और जीवन को नित और सुंदर बनाते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। आज हम सबसे पहले नज़र डालेंगे कौन सी बुक्स हैं जिनको अब अपने को शुरू करना चाहिए। तो किताबों के बारे में हम आज डिसाइड करेंगे। तो एक बार मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स में किताबें हैं, हर ग्रुप में करीब 30-40 किताबें हैं। तो जैसे कि एंशंट विजडम बुक्स हैं, फिर बुक्स ऑन हैबिट्स हैं, फिर हैं ब्रीदिंग बुक्स, प्राणायाम के ऊपर किताबें हैं, फिर किताबें हैं बुद्धिज़्म के ऊपर, बिजनेस के बारे में, एन्जाइटी को कैसे ठीक करें, बीमारियों को ठीक कैसे करें, डिप्रेशन को कैसे करें, डिजिटल एडिक्शन जो हो जाता है सेलफोन का या उसको कैसे करें, परफेक्शनिज्म भी अपने आप में एक चुनौती है उसको कैसे ठीक करें। ये कोर विजडम बुक्स हैं, क्रिएटिविटी बुक्स हैं, एनर्जी बुक्स हैं, अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, फिटनेस के ऊपर हैं, फोकस एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। और अपन इन फोल्डर्स के अंदर जाके देखेंगे तो ये बहुत सारी किताबें हैं, ये सब किताबें हैं जो ये सिखाती हैं एकाग्रता कैसे बने। तो हर विषय पर करीब अपने पास 30-40 जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं पिछले 2-3 सालों में जो मैंने पढ़ी, तो वो उनके सबके नोट्स अपने पास हैं। तो अपन को अभी ये देखना है कि अगला अपन कौन सा शुरू करें। एनर्जी, फोकस, गोल सेटिंग पे किताबें, लीडरशिप है, ये लर्निंग बेटर कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत सी किताबें हैं इसके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से कौन से क्षेत्र की किताबों को, कौन से ग्रुप की बुक्स को अभी अपन को अगला शुरू करना चाहिए। मेडिटेशन पर हैं, मेंटल टफनेस पर हैं, नई किताबें जो भी रिलीज़ हुई, न्यूट्रिशन पर हैं, पेरेंटिंग पर हैं, पीक परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी, टाल मटोल की आदत को कैसे कम करें, ये प्रोक्रेस्टिनेशन पर हैं सारी बुक्स, कि टाल मटोल की आदत को ख़त्म करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, वेरी पावरफुल बुक्स। तो ये एक बात हो गई। देन प्रोडक्टिविटी की किताबें हैं, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर हैं, हाउ टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ इन लाइफ, पब्लिक स्पीकिंग पर हैं, पर्पस पे हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक करें, सेल्फ इमेज को कैसे ठीक करें, अपनी स्लीप में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। तो ये स्पार्टन ट्रेनिंग वाली जो किताबें हैं ये असल में वो बुक्स हैं जो फिज़िकल मतलब बॉडी को स्ट्रेंथ ताकत देती हैं, वेट लॉस पर हैं, विल पावर पर हैं। तो प्रेम जी, क्योंकि हमने पुराने वाली बुक ख़त्म कर ली थी तो अभी एक नया हमको तय करना है किस क्षेत्र की बुक अब अपन लें और आगे बढ़ें। तो मैं तन्वी मैम के साथ और तरुण जी के साथ यही डिस्कस कर रहा था अभी। तो लेट्स से कहाँ से शुरू करें, कोई सुझाव आप में से कोई तीनों में से कोई देना चाहेगा?
गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग प्रेम जी। ये देख पा रहे हैं क्या विजडम बुक्स हैं, इसमें सारे धर्मों की किताबें हैं, जैसे गाइड टू गुड लाइफ ये स्टोसिज्म पर है, बियॉन्ड रिलीजन ये दलाई लामा की किताब है ना, बिग माइंड बिग हार्ट बुद्धिज्म पे किताब है। तो ये अलग अलग धर्मों की किताबें हैं पर वो बहुत अच्छे से सार रूप में जीवन दर्शन को सिखाती हैं। आई थिंक जरथरिज्म पर भी एक किताब है। तो ये रहा, तो ये बुद्धिज्म
सर,
पर है।
बुद्धिज्म को ही ले लेते हैं पहले,
ऐसा?
इंडियन जो रिलीजन है उन
हाँ,
समझा
तो
जाए।
ये जो एंशियंट विजडम बुक्स हैं उन्हीं को पहले ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद वन बाय वन अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये हमने बुक कर ली थी, अ गाइड टू गुड लाइफ, ये किताब हमने कर ली थी। तो अभी हम ये बियॉन्ड रिलीजन दलाई लामा की बुक है, आज इस पे बात कर लेते हैं ना?
ठीक सर,
ठीक है, ओके। चलिए, तो इन एंशंट विजडम बुक्स पे ही काम करते हैं, फिर उसके बाद में अपन नए टॉपिक चुन लेंगे। ओके, गुड टू गो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सबसे पहले लेट मी स्टॉप दिस। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है दलाई लामा जी की, बियॉन्ड रिलीजन, ये असल में इसमें इसका क्या, इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं, ये बुक क्या कहती है, तो एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इस बुक में जो दलाई लामा जी एडवोकेसी करते हैं, वो कहते हैं कि सेकुलर एथिक्स होने चाहिए। सेकुलर एथिक्स क्या होते हैं? कि देर आर कोर ह्यूमन वैल्यूज़, और ये जो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, दे शुड बी यू नो रिगार्डलेस ऑफ फेथ, चाहे इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी उससे आता हो, लेकिन ऐसी कुछ वैल्यूज़, अगर हमको इक्वालिटी की बात करनी है, अगर हमको कंपैशन की बात करनी है, तो वो सबके लिए होना चाहिए। दैट शुड बी फॉर एवरीवन, दैट शुड बी फॉर ऑल। तो ऐसी वो कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं जो हर धर्म के इंसान के पास होनी चाहिए, अगर वो इंसान अपने लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से जीना चाहता है? तो इन कोर वैल्यूज़ में दलाई लामा जी कहते हैं, कंपैशन इज़ दी वन थिंग, दूसरी है रिस्पेक्ट, तीसरी है टॉलरेंस, और चौथी है ऑनेस्टी। ये चार फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। तो अगर हमको जीवन को एक आनंद के साथ जीना है, और रस आना चाहिए जीने में, मज़ा आना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, तो ये चार चीज़ों का अभ्यास नियमित रूप से करने की ज़रूरत है। कंपैशन, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और ऑनेस्टी, ये चार वैल्यूज़ को वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसको वो बढ़ते चले जाना चाहिए। अब हमको ज़्यादातर समय, बहुत बार ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, व्हाट अदर्स आर डूइंग फॉर मी, दूसरों ने मेरे लिए क्या किया, या ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरों ने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो यहाँ पर दलाई लामा जी का जो एंगल है लाइफ के लिए, वो बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं, इस बात को छोड़ दो कि दूसरे मेरे लिए क्या करते हैं या दूसरे मेरे लिए क्या नहीं कर पाते हैं, द पॉइंट इज़ मैंने दूसरों के लिए क्या किया। क्या जो एम्पैथी है, जो कंपैशन है, ये नेचुरल ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, ये मेरे अंदर डेली डेली बढ़ रही हैं क्या? मैं दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को, दूसरों की तकलीफ़ को अपने भीतर अनुभव कर पाता हूँ क्या? तो ये इसके बारे में बात करते हैं। तो इनका कहना है कि अगर लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्ड करना है, तो हमको बच्चों में अपने भीतर ह्यूमन वैल्यूज़ को, कोर ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी एक एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट इस किताब में समझने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने ना, हम सब बात करते हैं फिजिकल हाइजीन की बात करते हैं। फिजिकल हाइजीन में क्या होता है, हाथ धो के खाना खाना है, जो भी मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखते ही हैं अपन फिजिकल लेवल पर। तो यहाँ पर दलाई लामा जी इस बुक में जो एक बात बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही यूनिक और खास लगा, वो कहते हैं इमोशनल हाइजीन। तो एक आइडिया है इमोशनल हाइजीन का, और वो क्या कहते हैं कि यू नीड टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस एंड यू नीड टू कल्टिवेट पॉजिटिव वंस। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो ठीक वैसे ही हैं जैसे हाथ के ऊपर जर्म्स लग गए। तो अब वो जर्म्स, अगर हमने कुछ काम किया और वो जर्म्स लग गए, अगर हमने हाथों को ठीक से क्लीन नहीं किया, तो वो फिजिकल हार्म करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए, कुछ ऐसे भाव आए जो नेगेटिव हैं, तो इनका अपना असर होगा हमारी साइकिक बॉडी पे। जैसे बाहर के जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हैं उनका असर होता है फिजिकल बॉडी पे, अगर हमने इमोशनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो उसका सीधा सीधा असर होगा हमारी साइकिक बॉडी पर और हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। हमारा आत्मविश्वास, हमारी भीतर की सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ एस्टीम, तो ये जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए हम सबको फिजिकल हाइजीन के साथ साथ इमोशनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। सो ट्राइंग टू क्लिंजिंग योर ऑल दी नेगेटिव इमोशंस। तो ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं हमारी जो इनर वैल्यूज़ हैं उन इनर वैल्यूज़ को अगर हम लगातार बिल्ड करते चले जाएं तो इमोशनल हाइजीन का ख्याल रखा जा सकता है। ये इनर वैल्यूज़ क्या हैं? तो उसमें वो कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, रेजिलियंस, ये इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। कितनी चीज़ें उन्होंने कहा? तीन चीज़ें, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? अपने जैसे लेट्स से आपका जो पीस ऑफ माइंड है, आपका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो मतलब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और फिर कुछ घटना घटी, लेट्स से फिर किसी ने कुछ कह दिया या कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गया। योर कैपेसिटी टू रीस्टेट योर दैट पीसफुल मेंटल स्टेट अगेन, तो आप अपनी उस शांति प्रिय जो मानसिक अवस्था है उसमें कितनी देर में वापस लौट पाते हैं? 1 मिनट में, 10 सेकेंड में, 1 घंटे में, 2 दिन में? दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो रेजिलियंस इज योर कैपेसिटी टू बी इन योर मोस्ट पीसफुल स्टेट। तो उसमें कितना समय लगता है? अगर बाहर वाली कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई घटना आपको डिस्टर्ब कर दे तो आपको वापस अपने आप को बैलेंस करने में कितना समय लगता है? दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। और रेजिलियंस जितना हम अपने अंदर डेवलप करते हैं उतना लाइफ जो है हमारे लिए अच्छी होती चली जाती है। तो इसमें दलाई लामा जी की किताब में पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अपन ने बात की, व्हाट वाज दैट? नीड फॉर सेकुलर एथिक्स। जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सबके लिए होनी चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने क्या कही कि हमको डेली बेसिस पर इमोशनल हाइजीन पे काम करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इमोशनल हाइजीन का कॉन्सेप्ट। और डेली बेसिस पर जैसे हम नहाते धोते हैं वैसे ही हमको अपने इमोशंस को क्लींजिंग की जो प्रोसेस है उससे हमको गुजरना चाहिए डेली बेसिस पे। सो दैट इज़ रियली अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ पे काम करते हैं। तो दलाई लामा जी इसमें एक चौथी चीज़ है जिसको वो एम्फसाइज करते हैं, और वो क्या है? वो कहते हैं कि जो साइंस है सेकुलर एथिक्स का, उसको हमको समझना चाहिए। मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड के बारे में, इमोशंस के बारे में, न्यूरोसाइंसेस के बारे में, पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में, वो उसकी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट हाउ टू कल्टिवेट कंपैशन, हाउ टू कल्टिवेट एम्पैथी, ये इसका हमको प्रॉपर ट्रेनिंग और इसका एक प्रॉपर इसमें हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है वो हमको जो है उस पर हमारा काम होना चाहिए। तो बहुत बार लाइफ में इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं होती है, इस तरह से हम काम नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पर वो कहते हैं कि वी नीड टू वर्क ऑन दैट, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, है ना? तो ये एक और चीज़ है। और मुझे इस पुस्तक में एक और बड़ी काम की चीज़ लगती है जो एंड में वो कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, राइट? तो ये जो हमारी दुनिया है, क्या हम मतलब हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी है, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन टेक। तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने खुद के मन की जो कैपेसिटी है, लेकिन आई कैन ओनली हैंडल माई सेल्फ, मेरे से उससे ज़्यादा जो है वो नहीं लिया जाएगा, उससे ज़्यादा पेन नहीं लिया जा सकता, मैं बस अपनी ज़िंदगी को ठीक करने तक रह सकता हूँ। समबडी विल से नो नो, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माई फैमिली। तो परिवार में अगर कोई उदास है, परेशान है, दुखी है, व्यथित है, तो मैं परिवार को हैंडल कर सकता हूँ। फिर देन समबडी विल से नो, आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सोसाइटी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे परिवार के अलावा मैं समाज के लिए भी करूँगा, देश के लिए भी करूँगा। तो यहाँ पर वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दलाई लामा बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के किसी भी होने में, लाइक पर्यावरण की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की प्रॉब्लम है, पीस की प्रॉब्लम है, तो क्या हमारे मन में वो भाव उठता है कि कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ? क्या वो जो दर्द है उन लोगों का जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, क्या हमको महसूस होता है? ये जो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है वो बहुत कमाल की बात है। वो कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ आर नेशनैलिटी, रिगार्डलेस ऑफ आर रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ आर कल्चर, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, तो क्या हम दूसरे ह्यूमन्स के दर्द को अनुभव कर सकते हैं? वो जो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो बहुत कमाल की बात है। तो इसमें थोड़ा और अपन जाएं तो एक और फोर की प्रिंसिपल्स की बात वो करते हैं कि जीवन के चहुमुखी विकास के लिए कैसे करना चाहिए, तो किस चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। तो एक चीज़ वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कंपैशन, कल्टीवेटिंग एम्पैथी एंड काइंडनेस, देन रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से रिलीजन से आते हैं और कहाँ से आते हैं, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कल्टिवेटिंग इनर स्ट्रेंथ एंड मॉरल इंटीग्रिटी। तो ये बड़े कमाल के पॉइंट्स थे इस पुस्तक के। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मा ने नमः। ओम शांति शांति शांति।